संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। सतासीवीं गाथा कल हुई थी, आज 88 और 89वीं गाथा, इन पर चर्चा चलेगी। अब इन गाथाओं में यह बताया जा रहा है कि दिनेश्वर के उपदेश की प्राप्ति होने पर पुरुषार्थ कार्यकारी है। इस कारण जो दिनेश्वर देव के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करता है, मोहनाश करने वाला, वह अल्पकाल में ही सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। स्वपर के विवेक से ही मोह का क्षय होता है, इसलिए वह स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। गाथाओं का पद्यान हुआ इस प्रकार है। देखो, सम्मादर्शन की प्राप्ति के लिए यानी मोह के नाश के लिए, सम्मादर्शन की प्राप्ति कहो चाहे दर्शन मोह माने मिथ्यात्व के नाश की बात कहो, पांच लब्धियों की चर्चा शास्त्रों में आती है। पांच समवायों की चर्चा भी आती है। पांच समवायों में एक निमित्त होता है और चार उपादान होते हैं, और पांच लब्धियों में भी एक निमित्त होता है जिसे देशना के बोलते हैं हम, और बाकी चार हमारे उपादान की तैयारी की बातें हैं। अब इसमें जो लिखा है, दो चीजें लिखी हैं कि दिनेश्वर के उपदेश की प्राप्ति होने पर, यानी पहले हमें दिनेश्वर का उपदेश प्राप्त होगा यानी देशना लब्धि होगी, और उसके बाद पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने लिखा है, पुरुषार्थ करोगे तो पुरुषार्थ कार्यकारी होगा। इस कारण जो दिनेश्वर देव के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करता है उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। तो पुरुषार्थ में बाकी के चार उपादान समझ लीजिए, और अथवा बाकी के चार लब्धियां इनने ले ली हैं, क्योंकि देशना लब्धि तो उनने अलग कर ही दी है कि जिनेन्द्र भगवान के उपदेश के अनुसार। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, और उसका जगह जगह प्रतिपादन करना भी जरूरी है, कि जितने भी निमित्तों का कथन शास्त्रों में है उन सब का मैं एक देशना लब्धि उपदेश भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण, चाहे उनके शास्त्रों का अध्ययन कहो चाहे गुरु से उनकी बात को पढ़ने की बात कहो, ये देशना लब्धि इसका ही सर्वाधिक महत्व है। और ऐसा नहीं कि इनका सर्वाधिक है और बाकी का भी थोड़ा बहुत हो, बाकी किसी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सीधी आत्मा के कल्याण में यही निमित्त होती है। बाकी जितना भी निमित्त संबंधी बातें कही हैं उनको अपने आप तुम देख लेना, वृत शील संयम आदि भी हैं, भक्ति पूजा पाठ आदि भी हैं, सब वो सब पुण्यबंध के कारण है। और नीचे ऊंचे जैसी पुण्यबंध के भाव होते हैं उनके अनुसार आपको बंध होता है, और बंध होकर उस गति में आप जाते हैं तो ये संसार परिभ्रमण चलता है। उस संसार परिभ्रमण को तोड़ने वाला यदि कोई एक आध निमित्त है तो वो देशना लगती है, उसको ही उन्होंने स्थान दिया है और किसी चीज को स्थान नहीं दिया है। अब रहा कि पुरुषार्थ करें, अब तो कैसा बाकी संस्कार लब्धि के बिना हो जाएगा, इसके बिना हो जाएगा, उसके बिना हो जाएगा, तो वो कहते कि नहीं, उस पुरुषार्थ जो कहा है, जब हम पांच समवायों को या पांच लब्धियों को हम दो भागों में बांटेंगे तो पांचों को ही हमें दो भागों में शामिल करना पड़ेगा। ये हमारे विवेक पर निर्भर है कि हम किसको कहां किसमें शामिल करते हैं। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम निमित्त में चार शामिल कर देते, पुरुषार्थ में अकेले जन्म देते, बाकी निमित्त में कर देते। लेकिन नहीं, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है कि वो आत्मा की पर्यायगत योग्यताएं हैं, इसलिए वो काललब्धि वगैरह उनने पुरुषार्थ में शामिल की, तो उन्होंने फिर साथ में लिख दिया जिनेन्द्र भगवान के उपदेश के अनुसार जो पुरुषार्थ करता है, उस पुरुषार्थ में शर्त लगा दी कि जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में मिथ्यात्व के नाश के लिए जो पुरुषार्थ बताया गया है उस वो पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ का तुम अपने मन से अर्थ नहीं लगाओगे, इसमें जो टीका में एक वाक्य है अभी अपन पढ़ेंगे उसे, उसको लेके झंडा लेके सामने वाले खड़े होते हैं कि देखो कितना लिया है, उदाहरण दिया है उन्होंने तो ये कि हम तलवार चलाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमारे पास तलवार है भी, लेकिन जब तक हम उसे चलाएंगे नहीं तो हम शत्रु को कैसे जीतेंगे क्या? इसलिए भगवान के उपदेश के अनुसार हमारे पास सब उपलब्ध है, लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे होगा, ये इस पर उदाहरण उन्होंने दिया है। और जो हमको बिल्कुल लगता है तो सब लोग कहते देखो देखो लिखा ना कि कोरी बातों से कुछ नहीं होगा, उपदेश को तो कोरी बातें कहते हैं है? अब काल लब्धि का इंतजार करने के अलावा और कोई पुरुषार्थ नहीं है, यानी काल लब्धि को हम जल्दी ले आए ऐसा कोई पुरुषार्थ शास्त्र में बताया आपको? वो तो एक सेकंड में भी पहले और बाद में हो नहीं सकती, तब काल लब्धि के लिए में क्या पुरुषार्थ करें, समझे ना? तो जो भी आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ बताया है उसमें हमें उसी रूप से शामिल करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि देखो हमने कह दिया ना कि तलवार जब तक चलाए नहीं तब तक हमको नहीं मिलेगा, मैंने तलवार चलानी चाहिए, तलवार चलानी चाहिए का मतलब फिर तो उपवास करना चाहिए, ये करना, जितना भी क्रियाकांड है उस सबको भी तलवार चलाना कहते हैं। और जब ये कहते हैं अकेली श्रद्धा से काम नहीं होगा, वो श्रद्धा और ज्ञान, ज्ञान माने जानना और श्रद्धा होना, वो चारित्र धारण करना पड़ेगा, तो ये भी वही बात, इसी बात का रिपीटेशन है। वो साफ बिल्कुल सही है, अपने भी कहते हैं हम बिना तीनों के एकता रूप मोक्ष मार्ग है, समरसन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, लेकिन वो उसको काय को है चारित्र की परिभाषा वो अपने हिसाब से कर लेता है, वही व्रत उपवास आदि जो बातें जो है शुभ भाव और शुभ क्रिया उसको वो चारित्र मान लेता है, उसको कहता करोगे नहीं जब तक काम नहीं होगा। अब यहां करोगे माने वो पुरुषार्थ है कि तुमने आत्मा को जान लिया, अब आत्मा में रमण नहीं करोगी, ये अर्थ है उसका, पुरुषार्थ का अर्थ। पुरुषार्थ का अर्थ वो सारे क्रियाकांड जिन्हें व्यवहार से शास्त्रों में भी चारित्र कहा है, द्रव्य संग्रह में बहुत स्पष्ट गाथा है, असुहादो गण वृत्ति सुहे प्रवृत्ति ही जान चारित्रम, अशुभ से छोड़ना और शुभ में प्रवृत्ति करना इसे चारित्र जानो। और साथ नीचे की पंक्ति में व्यवहारा तो लिखा है बस, समझे ना, जो भी लिखा है वो वृत्त समिति गुप्ती रूप होता है, तो ये व्यवहार न्याय का कथन है, निश्चय से वो उसी में आ गए थे, ध्यान को ही सर्वोत्कृष्ट बताया है क्या इसका, दोनों ही मोक्ष मार्ग आत्म ध्यान की अवस्था में ही प्राप्त होते हैं, ऐसी भी एक गाथा है ना, ध्याने पांगुण ऐसा ऐसे पद है, दुभिहम्पी मोक्ष हेयू ध्याने पांगुण, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में ही प्राप्त होते हैं। अब ध्यान में तो आत्मा की अनुभव ही हो गया ना, अब जो ध्यान में आत्मा का अनुभव होता है ना, अब अपने जो कहते हैं हाँ अब आ गए ना लेन पे, अब ध्यान को मान लिया। अरे ध्यान को किसने कब नहीं माना, हम तो ये कहते हैं कि ध्यान ही वास्तव में चारित्र है, 12 तपों में ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट तप है, लेकिन जिस व्यायाम को उठा पटक को तुम ध्यान कहते हो, वो ध्यान ही नहीं है। दिक्कत तो ये है ना, मतभेद तो उससे है कि नाक को देखो, सांस को देखो, और प्राणायाम करो, ऐसी रीत गति करके बैठ जाओ, ऐसा जिसे तुम ध्यान कहते हो है? मैं पूछता हूं, बिना ध्यान के ये पठन पाठन हो सकता है? सबसे ज्यादा ध्यान तो आप लोग करते हो, क्योंकि यहां पर जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो उस वक्त पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, मनो उनकी बात पर ध्यान लगाना पड़ता है ना, कि बिना ध्यान लगाए समझ में आ जाती है, फिर उसे तैयार करने में, समझने में, और फिर रटने में, याद करने में, याद रखने में, सब में ध्यान लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? तो हम कहते हैं कि वो मुनिराज दिन में 18 घड़ी ध्यान करते हैं, तो हमारे विद्यार्थी 17 घड़ी नहीं करते हैं। जब कम से कम परीक्षा आदि का समय आता है तब 18 घड़ी बराबर दिन रात ध्यान से ही पढ़ते हैं ना, कि नहीं था वो ध्यान करने की वो बात है, उसकी बात है, इसकी बात है। अरे भाई ध्यान, चलो निकालो, ध्यान निकालो, घबराना नहीं, निकालना कुछ नहीं है, मैं ही बताऊंगा। आज ध्यान तो करना नहीं है, वो तो छोड़ना है। रौद्र ध्यान करना नहीं है, वो तो छोड़ना है। शुक्ल ध्यान पंचम काल में होता नहीं है, 3 ध्यान से तो छुट्टी होगी। 2 मिनट का काम है, अब कौन बचे धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान के 4 वेद, आज्ञा विचय, उपाधि विपाक विचय और संस्थान विचय। तो ये सारे स्वाध्याय रूप है। करुणानियोग का स्वाध्याय करना वो आज्ञा विचय ध्यान धर्म ध्यान है। करुणानियोग का स्वाध्याय करना वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। मोक्ष मार्ग की का विचार विमर्श करना, अध्ययन करना, वो क्या नाम अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। और वो संस्थान जो अभी करते हैं ना, विधान करते हैं, तो उसमें जी अखी तंत्रिक तरह यहां यहां लोक का ऐसा आकार है, ये हो गया कौन सा ध्यान। तो अपने सब ध्यान ही तो कर रहे, 24 घंटा इसी में तो लगे। जो भी अपने पीरियड लगते हैं, सब पीरियड को मिला दो तो चारों अनियों के चारों ध्यान हो जाते हैं। तो बिना ध्यान लगाए तो कोई विद्वान बनता नहीं है। आप ये बहुत अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारे सुनने में क्या सोगानी जी, कोई इनके पढ़ने में बहुत फर्क है। ये 5 साल में ठोस विद्वान बन के जाएंगे, यहां से अधिकारी गद्दी पर बैठकर एक अथॉरिटी के रूप में बात करेंगे। पर आप 40 साल हो गए होंगे सुनते सुनते, वहीं बैठे रहोगे। मैंने इसको भी छोड़ दो, ये नहीं कह रहा हूं। मतलब स्टडी करना अलग बात है और सुनना अलग बात है। ये स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं गहराई से, और वो ध्यान के बिना संभव ही नहीं है। क्या आप समझेंगे ना, तो ध्यान तो है, हम ध्यान के ध्यान ही करते हैं। हमने सारी जिंदगी इसी पर ध्यान लगाया है, उसके बिना ये काम होता है क्या है? कोई भी काम ऐसे होता है क्या, बोलो इसके बिना? अब वो जो ध्यान के नाम पर सारे देश में एक क्रियाकांड पनप रहा है, और उस क्रियाकांड को वे कहते ध्यान है, और हम नहीं मानते उस क्रियाकांड को उनके, तो कहते ध्यान को नहीं मानते बस। अब वो बिल्कुल बौद्धों की नकल पर है, घबराना नहीं। ये गोयन का है ना, तो सुना तुमने कौन सा ध्यान कहते थे, विपस्सना, विशेष प्रकार से पश्च माने देखना, विपस्सना माने विशेष प्रकार से देखना, उसका नाम है विपस्सना। तो विपस्सना नाम का ध्यान यहां चला, और ये सब करोड़पति लोग, खासकर जयपुर के सब जबेरी लोग उस ध्यान में गए, खाई के लिए, ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए, डायबिटीज ठीक करने के लिए। एक भी आदमी मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष मार्ग को समझने के लिए उस ध्यान में आज तक नहीं गया। नहीं तो बौद्धों के क्यों जाता, सबसे पहले उनने शुरू किया यहां मोहनवाड़ी में, उधर ख्याल में आए ना, और उनने शुरू किया। ये जब गए, उनने कहा फोन बंद, ये बंद, घर वाले से मिलोगे नहीं, कोई धन व्यापार की धंधा नहीं करोगे, अखबार पढ़ोगे नहीं, कोई किताब पढ़ोगे नहीं, बस अपने कमरा में बैठे रहो, क्या करें, बस बैठे रहो। तो उन्हें 7 दिन में लौट के आए कि साहब हमको तो बहुत आराम मिला, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, डायबिटीज, और रूखा सूखा खाना दिया, तो आधा पर्दा दिया, क्यों और उसमें नहीं, तो वजन भी कम हो गया, डायबिटीज कम हो गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया, वजन भी घट गया, बहुत बढ़िया, आनंद मजा आ गया ना। अब क्या करें, सब सब जवेरी जाने लग गए, सब जवेरी, एक भी नहीं बचा। ये चिंता हुई हमारे किनको, असली जवेरी ही जिनके भगत हैं, वो जिन्हीं के भरोसे जिनका धर्म चलता है। देखो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मैं जानता हूं सब जगह पहुंचती है बात, और मेरे सभी मित्र बैठे हैं चारों तरफ, तो वो उन्होंने हम गए थे उनके पास, लाड़नू विश्वविद्यालय में हम गए थे। लाड़नू विश्वविद्यालय में ध्यान के 2 प्रोफेसर थे, पति पत्नी दोनों वहां ध्यान पढ़ाते थे, और वो बाकायदे डिग्री देते थे, पढ़ाते थे, बहुत अच्छे आदमी थे, और वो दिगंबर जैन थे, अपने शिविर में भी आते थे, मैंने मुमुक्षु भी थे क्या, तो ये अपने शिविर में भी आते थे और समय सार का पाठ भी करते थे, अपना समय सार में सब मंगाए वहां प्रवचन करते थे, एक आदमी वो सब सुनते थे उनके, और वहां प्रोफेसर थे वे पढ़ाते थे। तो हम वहां गए तो हमने आचार्य तुलसी जी थे तब, और महाप्रज्ञ जी, दोनों से एकांत में बात की कि साहब हम एक समझना चाहते हैं कि जो आप ध्यान चला रहे हैं एक कौन से शास्त्र में है, कहां से आता है, कैसा है, वहां भगवान महावीर से आज तक तो उन्होंने किसी ने चलाया नहीं, ध्यान की क्लासें कभी चलाई हों, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता नहीं। ये सब बातें हमने कही कि हम जानना चाहते हैं, ईमानदारी से इस बात को समझना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे क्या कहा ना, अभी हम सभा में कह रहे भरी में, कि गोयन का है ना, कि गोयन का ने चलाया नहीं, तो सारे जवेरी जो सब लोग उसमें ही जाके फंस गए, सब बौद्ध हो जाएंगे, जैन नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे अपने हाथ से, कोई उपाय नहीं था हमारे पास। तो मैं भाई जी आपने तो अनुप्रेक्षा, ये अनुप्रेक्षा है ना अपनी, अनुप्रेक्षा भी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ध्यान अनुप्रेक्षा धर्म ध्यान है, ध्यान के पहले की स्थिति है। तो उनने अनुप्रेक्षा में से अनु हटा के प्रेक्षा रख लिया, और प्रेक्षा ध्यान उनका था विपस्सना, मन वितराग भाव से देखना, और इन्हें प्रेक्षा वो भी देखना, और उसी स्टाइल पर उन्होंने सारा तातवाना खड़ा किया कि हमने इसके लिए किया। सीधा उद्देश्य हो गया कि ये तो गोयन का की से बचाने के लिए जैनियों को, जैसे अपन कहते हैं पहले ये हमने जी क्या किया है नवग्रह विधान, क्योंकि नवग्रह विधान ब्राह्मण लोग कराते थे और वो कहते थे ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, तो हमारे जैनी सब उधर भागते थे, तो हमने भी 5 देवता और जोड़ के नव देवता कर दिए, और नवग्रह हमने विधान भी कर दिया, नवग्रह नहीं थे नवदेव विधान हो गया, उसे नवग्रह ही विधान कहने लग गए, कि नवग्रह की शांति इससे होती है, मेरा समझे ना, ये सब ऐसे आए। तो एक तो बात वो क्लियर हो गई कि उद्देश्य क्या था, किसने क्या किया। फिर हमने उनने कहा था वो प्रोफेसर जो हम उनके पास भी गए थे सब समझा, तो उनने कहा कि आप सब उनसे कहो महाराज से तो हमें ये भेज दें, तो 7 दिन के लिए हम यहां आ जाएंगे इस स्मारक में, तो आप लोग सब लोगों को पूरा बताएंगे जो कुछ भी होता है, ये समझे हम पूरा अच्छी तरह समझना चाहते थे। हमने महाराज से कही कि महाराज हम इन्हें भेज दो तो हमारे हम लोग समझेंगे देखेंगे, तो उन्होंने परमिशन दे दी, फिर वे दोनों जने यहां आए। तब हमने सब आपस में मीटिंग बुलाई थी, पाटनी जी थे सब थे, जतीश भाई थे सब थे, तो क्या करना भाई, तो वो तो चाहते थे कि विद्यार्थियों की क्लास लगना है, उन्होंने कहा पहले हम देखेंगे और हमारी समझ में आना चाहिए कि जी आपने जैन धर्म के हिसाब से सही है कि नहीं है क्या है, तब हम फिर विद्यार्थियों में अलाउ करेंगे। तो हमने इसमें ठहराया विद्रा विज्ञान भवन में, पीछे ना वो कुंद कुंद कहानी भवन पीछे वाला, और उसमें एक कमरे में क्लास रखी और उसमें पढ़ाने वाले भी दोनों पति पत्नी थे, और पढ़ने वाले मैं, पाटनी जी, बड़े दादा, जतीश भाई, ऐसे 6-7 लोग हम पढ़ने वाले थे। जो सब यहाँ के जो अधिकारी वर्ग था वो सब पढ़ने के लिए थे। 7 दिन पूरी तरह से कि जब आप जितना जो कहो तो हम तैयार हैं। उन्होंने हमें पढ़ाया तो प्रश्न किया कि इससे आत्मा के कल्याण का संबंध क्या, वो सब उन्होंने बताया जी ऐसा करो, जैसा करो, ऐसा करो, जो सब बताई वो सब चीजें उसमें ऐसा, तो इससे आत्मा के कल्याण का क्या संबंध, आएगा 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 ऐसा कहते रहे। लेकिन वो 7 ही दिन रोज ही ना पूछते रहे, लेकिन 7 दिन में वो आत्मा परमात्मा आया ही नहीं, और वही ब्लड प्रेशर ठीक हो, वो बनाना हो, ये सब होता रहा, ये सब तो हमारी समझ में आ गया। मतलब हमने पूरी स्टडी भी की, शास्त्रों की भी की, अपने जैन शास्त्रों की भी की, जो ज्ञानानंद वगैरह में है उसको भी देखा, मेरा मतलब फिर पूरे विवेक पूर्वक उसके संदर्भ में जो भी निर्णय हमें करना था हमने किया, और फिर हमने यहां लागू करना उचित नहीं समझा, इसलिए समझ लो कि आप लोग उससे वंचित हैं, तो आपके हित में आप लोग वंचित हैं। और फंसने के लिए तो अभी बहुत रास्ता है, यहां से जाओ बाद में फंस जाना, तुम में इतनी अकल नहीं आए, फिर जाके कि फंस गया तुम्हारा विद्यार्थी वहां जाके, तो हम कहें 5 साल में हमने जो बताया वो उसकी समझ नहीं पाया, आप क्या करें, क्या कहना आपको, उसमें कुछ नहीं कहना, अब क्या कहना हमें, क्यों हमने परिचय करना सब सिखा दिया, वो कोई और उद्देश्य से फंसा होगा उसको क्लियर शास्त्र में क्लियर शास्त्र में बातें ही नहीं करते, वे 4 प्रकार के ध्यान की, कोई ध्यान छोड़ने लायक है ये भी नहीं बात करते, जबकि 2 ध्यान में 8 ध्यान 4 प्रकार के 8 ध्यान 4 प्रकार के रौद्र ध्यान छोड़ने लायक हैं, और अनादि से प्रत्येक जीव कर रहा है उनसे बचना है, ध्यान की समस्या ही कहां है, ध्यान तो 24 घंटा हम करते हैं, अभी वो आत्मा का ध्यान नहीं करते, सिर्फ ध्येय बदलना है, तो ध्येय का स्वरूप तो समझो क्या है। उनको क्या लगता है कि यदि हम जैन धर्म की बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, तो ये सामने सांप्रदायिक हो जाएगा हमारा ये ध्यान का सिद्ध, उनको सांप्रदायिक नहीं बनाना है, उन्हें दिगंबर श्वेतंबर थानकवासी जैन अजैन बौद्ध हिंदू ब्राह्मण मुसलमान सबको अपना शिष्य बनाना है, सब आए उनके ध्यान की क्लास में, इसके लिए उसे इन धर्मों के शब्दों से बचना है, हमें तो धर्म ही धर्म पढ़ाना है, हम धर्मों के शब्दों से बचने की बात कैसे कह सकते हैं, क्या ध्यान का स्वरूप ध्यान ध्येय किसे कहते हैं वो सब बात समझनी चाहिए ना। अतः ये तो नक्की है, देखो अपने यहां भी ध्यान नाम एक तप नाम का वो आया है ना 10 धर्मों में, और तप में एक ध्यान नाम का तप है, तो तप जानते किसे कहते हैं, जो सम्य दर्शन हो सम्य ज्ञान हो, इसके बिना तो चारित्र नहीं होता। अब चारित्र के 2 भेद सुनना लक्ष्मी, एक संयम और एक तप, काल के भेद है चारित्र के। तो संयम माने जो साधु के जीवन में अनिवार्य है उसका नाम संयम, और जो ऑप्शनल है उसका नाम तप। क्या मतलब, उपवास है तप, और 5 महाव्रत हैं संयम, वे तो उसे लेने ही पड़ेंगे 5 महाव्रत, तो इरिया समिति पूर्वक तो चलना ही पड़ेगा, भाषा समिति में तो बोलना ही पड़ेगा, अनिवार्य है ना। और उपवास करें नहीं करें, कोई 6 महीने के करें, कोई एक ही उपवास करें, और मुनिराजों को तो अनिवार्य है अभी नहीं, वो एक करना भी जरूरी नहीं है, ग्रस्तों को दूसरी तीसरी प्रतिमाधारी हो चौथी प्रतिमाधारी हो तो उसमें नियम भी है कि इसमें 14 दिन का अभ्यास करना चाहिए, उनके तो वो भी नियम नहीं है। तो वो तप, उस तप में सर्वश्रेष्ठ ध्यान, क्योंकि जिससे अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। अब ऐसा तप, वो उस तप की ध्यान की बातें नहीं करते, वो तो प्राणायाम सिखाते, नाम तो उसका प्राणायाम है। वो रामदेव का, रामदेव तो के गुरु तो पतंजलि हैं, वो पतंजलि नाम से लड्डू भी बेचता है, शहद भी बेचता है, दवाइयां भी बेचता है पतंजलि के नाम से। पतंजलि तो योग के गुरु हैं, उनके धर्म में पतंजलि है ना। अब उनसे उनकी उनकी बहुत सफल हो रहा है, देखो वो अपन भी सफल हो जाएंगे, तो फिर तुम ना पतंजलि का बना लो ना कि नहीं नहीं हम पतंजलि का नहीं बनाएंगे, हम तो क्या बनाएंगे, सोम कौन सा आचार्य है ज्ञान आना वाले, शुभचंद्र, हम तो शुभचंद्राचार्य का खोलेंगे दवा खाना, और सारी दवाइयां शुभचंद्राचार्य के नाम पर बनाएंगे, सारा हम ध्यान है, सब धारणाएं, वो नीचे से अग्नि जल रही, ऊपर से वो हो रहा, फिर कमल जल गया, फिर ये हो गया, फिर जल धारणा, फिर पानी बरसा तो वो सब साफ हो गया, पहले जला दिया फिर साफ कर दिया, पानी डाल डूल के है, तो उसी का है। उनको भी दिमाग में ये आई होगी कि हम जैनियों को कैसे बचाएं वहां से जाने से, अब हमारे लिए गले का फंदा पड़ गया कि देखो साहब ज्ञान आनंद में लिखा है, अब हमको क्या कहें ज्ञान आनंद में क्या लिखा है। हम तो इतना जानते हैं कि भगवान महावीर से लेकर आज तक कहीं कोई ध्यान की क्लास नहीं लगी, ज्ञान की क्लासें लगती हैं, ज्ञान के स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, समझे ना, पांच पांच वर्ष का कोर्स होता है, है? और ध्यान का कुछ नहीं। हमने शास्त्र में पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा होगा कि वो युद्ध में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते हाथी की पीठ पर बैठे बैठे वैराग्य हो गया, तो उतर के वहीं से कैंसल लॉन्च किया और दीक्षा ले ली। क्यों? उन्हें दे दी दीक्षा, उन्हें दे दी, तो उन्होंने कब ध्यान की प्रैक्टिस करी होगी कि युद्ध में क्या हाथी पर बैठ के क्या कर रहे थे, बराबर ध्यान से ही तो मार रहे थे वो धनुष्वान बिना ध्यान के थोड़ी चलता है ये इस ध्यान की भी बात नहीं करते हैं बेटो, तो क्या वो आत्मा का ध्यान तो जो बहुत उत्कृष्ट चीज है ना। देखो दो बातें मैं बोलता हूं, ये ध्यान शब्द मेरे को इतना महान और इतना पवित्र लगता है, तो हमारे आचार्यों ने सामायिक शब्द का प्रयोग किया हमारे लिए, गृहस्थों के लिए सामायिक करना चाहिए, तीन दिन आता कि नहीं आता, मुनिराजों को सामायिक करना चाहिए, तो मैं सामायिक शब्द पसंद करता हूं, ध्यान शब्द तो उन्हीं को छोड़ता हूं कि वो अंतर्मुहूर्त आप जो है ना, समझिए ना अंतर्मुहूर्त शब्द, समझिए ना, बोलो ना पूरा सूत्र, उत्तम सहन नहीं से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्त आप, इसमें उसके लिए तो सामायिक शब्द का उपयोग करता हूं। अब ये एक ये प्राणायाम चलो ना आजकल, इसको भी ध्यान में ही डालते हैं ये सब, उसको सब कर करके, तो मैं उसे व्यायाम कहता हूं। यदि हम कुछ प्रेरणा देंगे कभी चलाएंगे तो हम व्यायाम चलाएंगे स्वास्थ्य, और शरीर प्योर स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यायाम चलाएंगे, ख्याल में आई ना, मतलब और धर्म की दृष्टि से सामायिक की बात करेंगे। ये बड़े शब्द जबरदस्ती ला करके और उसके बिना तो सम्मान दर्शन के बिना होते ही नहीं, और एक भी आदमी चाहे जैन कुछ नहीं हो सम्मान दर्शन की तो कोई बातें ही नहीं करता है, और तुम्हें तो हो ही नहीं सकता, क्यों कि तो हमें हिसाब से तो वो ग्रीड में छात्र है, जो वैसे हैं जिनको तुम गुरु बनाना चाहते हो हैं, वो कौन से अध्याय के हैं अपने मोक्ष मार्ग पे कह सकते, पांच में के होंगे कि छठ में के होंगे, उनका तो सात में भी नंबर नहीं आता, सात में अध्याय में भी नंबर नहीं आता है, है? ये वास्तविक परिस्थिति है। तो हमको जबरदस्ती ध्यान का विरोधी मानते हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान के बिना तो मोक्ष नहीं होता किसी को भी, ख्याल में आई ना। और ध्यान अपने यहां बताया है कि पहले सम्मदर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है, फिर चारित्र होता है उसके साथ में अंशे, फिर अनुव्रत होते हैं तो अनुव्रतों में बताया है कि सुबह सदभय शाम को दो दो घड़ी सामायिक करना चाहिए, तो ध्यान हो गया ना, शुरू हमारा कोर्स शुरू हो गया ना, तो पहले सम्यक दर्शन करो, सम्यक ध्यान करो, और फिर वो जो ध्यान है ना पहली प्रतिमा में कितना होना चाहिए, दो दो घड़ी होता है, दूसरी प्रतिमा में समझ लेना, तो वित्तीय प्रतिमा लो तो करो ना, कुछ नहीं, उन्हें कोई शर्त नहीं, हिंदू मुसलमान होने की कोई शर्त नहीं। अभी हमारे ध्यान वाले लोग, हमने सुना मंदिर जाना भी छोड़ दिया है उनने, जो अपने आसपास चलता है ना कि ध्यान, वे लोग मंदिर नहीं आते, कह रहे जरूरत नहीं है। चलो भाई कहां चल रहे अपन पढ़ते हैं, अभी मैं आप उत्थान का चला रहे थे, विगत गाथाओं में नहीं, ये तो होगी कौन सा है, अब इन गाथाओं में यह बताया जा रहा है कि जिनेश्वर देव के उपदेश की प्राप्ति होने पर पुरुषार्थ कार्यकारी है, तो पुरुषार्थ में उपदेश के अलावा जो बाकी चार लब्धियां ली हैं वो सब ले लेना, काल लब्धि वगैरह सब उसमें ही शामिल है जो प्रक्रिया, और अपने यहां तो पुरुषार्थ तो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ तो उपयोग को प्रसिद्ध द्रव्यों से हटाकर अपने आत्मा के पे ही लगाना है, और इसमें मोह राग द्वेष से हटाने के लिए भी बात की है, क्योंकि मोह राग द्वेष का तो नाश करना है, पर का तो नाश करना ही नहीं है, जो अपना जो भगवान आत्मा बताया ना जिसका ध्यान करना है वो उसको परद्रव से भिन्न है ना, ज्ञानावरण आदि कर्मों से भिन्न, द्रव कर्मों से भिन्न और भाव कर्मों से भिन्न, माने मोह राग द्वेष से भिन्न, ये बताया ना, तो मोह राग द्वेष से भिन्न कैसा, वो तो अपनी ही पर्याय है, उनका तो जो कल बताया था ना कि उसमें तो प्रदेश भेद नहीं है, है? तो ये कहते भैया उनसे ज्यादा भेद विज्ञान इसलिए ज्यादा जरूरी है कि उनका तो नाश करना है, परद्रव्य का नाश थोड़ी करना हमें, देखो समझना, ध्यान देना, ये देह से भिन्न आत्मा है और राग द्वेष से भिन्न आत्मा है, मिथ्यात्व से भिन्न आत्मा है, ठीक है, फिर स्त्री पुत्र से भी भिन्न आत्मा है, तो हमने इन तीनों से भिन्न जाना ना, तो इनमें स्त्री पुत्र और शरीर इनका कुछ नहीं करना है, इन्हें तोड़ना फोड़ना नहीं है, क्या कैलाश जी कि इन्हें छोड़ना तो है, आत्महत्या करोगे क्या करोगे, देह देह नहीं छोड़ना है, ये तो सिर्फ जानना है कि ये मैं नहीं हूं, बस खत्म, शरीर के बारे में तो लक्ष्मी सिर्फ जानना है कि ये मैं नहीं हूं और कुछ नहीं करना है इसका, ना सुखाना है ना ये करना है ना ये करना है, संलेखना में तो सुखाना पड़ेगा, अरे हम देह का कुछ करें उसका नाम संलेखना, आत्मा का करना है वो, तो उसमें तो देह सूख जाएगी, नहीं सूखेगी तो नहीं सूखेगी, हमारे बाप का क्या जाता, हमें तो मानते हैं ये मैं नहीं हूं, यानी परद्रव्यों से सिर्फ भिन्नता जाननी है, और राग को जाननी नहीं है अकेली, जाननी भी है और इसका त्याग भी करना है, त्याग और जरा कठोर भाषा में कहें तो नाश भी करना है, तो ज्यादा भेद विज्ञान तो इनसे जरूरी है ना, क्यों सेवानी जी, उसे तो सिर्फ जानना है कि ये मेरा नहीं, ये मकान आज तक जानते थे मेरा, अब जान लिया नहीं है, तो कह रहे हैं नहीं नहीं है, कैसे जान लिया, घबराना नहीं, रजिस्ट्री तुम्हारे ही नाम रहेगी, क्या तो क्यों तुम रजिस्ट्री दूसरे के नाम करोगे तब सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन के लिए जरूरी नहीं है तुम और चार मकान खरीदना और अपना नाम रखना, लेकिन ये समझना कि ये मैं नहीं हूं, बस इतना ज्ञान में आया तो हमारा काम हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, मकान में और शरीर में के रहते रहते केवल ज्ञान भी हो जाएगा, क्या कह रहा हूं, इस शरीर को तोड़ फोड़ के अलग करने की जरूरत नहीं है, ये शरीर रहेगा और केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन स्त्री पुत्र नहीं रहेंगे और राग नहीं रहेगा, रंच मात्र भी। देवभावे क्या बोलते, तीर्थंकर गोत्र बंधा है तो वो राग भी नहीं रहेगा। तो बोलो अब ज्यादा भेद विज्ञान किससे करना है, कर्ताकर्म अधिकार में राग से ही भेद विज्ञान शुरू किया है। राग का कर्ता आत्मा नहीं है ये कहा है, पर का कर्ता आत्मा नहीं है ये नहीं, यदि कहीं तो गाथाएं ऐसी हैं कि पर का कर्ता है, समय सार में ये बात नहीं, समय सार में ये बात नहीं है। गाथाएं घटपट बदानी दानी बोलो, समय सार में लिखा है घटपट पटारी पर दूरों का कर्ता व्यवहार नए से आत्मा है, उसी व्यवहार नए से रहेगा जिसका कर्ता लिखा है। क्यों, वो सद्भूत व्यवहार है, वो असद्भूत व्यवहार है, बस इतनी तो बात है ना, है तो व्यवहार ही नए दोनों। मेरे कहने का मतलब ये है कि रागा दिक्कत हमें नाश करना है और वो हमारे आत्मा में प्रदेशों में व्याप्त हैं। ये देह जो है, हालांकि जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहीं शरीर भी है, शरीर के परमाणु भी वहीं हैं, है ना, फिर भी एकदम पृथक पृथक हैं। क्यों, आत्मा के प्रदेश शरीर के परमाणु एकदम प्रदेश प्रदेश अलग अलग हैं, क्योंकि उस शरीर को जलाएंगे तो आत्मा नहीं जलेगा। तो अलग अलग नहीं होते तो जल जाना चाहिए था ना फिर, कि क्यों, कि आत्मा का नहीं जलना स्वभाव है इसलिए नहीं जलेगा, वो देह का जलना स्वभाव है इसलिए जलेगा। कहां रुझना होता है, हम अपने रसोई में, अब अपने तो तुम्हारे घरों की रसोई देखना, यहां तो वो बनता है क्या नाम चल गया आजकल, गांव गांव में भी चल गया है वो, कंडे से रोटी बनाओ, लकड़ी से बनाओ, अब समझ में आ गया, किन किन के घरों में बनती है लकड़ी से, कंडे से, हाथ उठाना जरा, मुझे उदाहरण देने के लिए तो रहे कि सबके घर में ये डब्बा घुस गया है, क्या बोलते इसको, गैस है, कोई कहीं हाथ नहीं उठता, अब क्या करूं मैं, उदाहरण कहां से लाऊंगा। तो वो जो ईंधन है जो आपके चूल्हे में जलता है, समझे ना, उससे में से बात निकलेगी, उसमें भी हम उसे जलाते हैं, तो वे परमाणु जिनमें जलने का स्वभाव नहीं है वे नहीं जलते हैं, और जिनमें जलने का स्वभाव है वे जलते हैं, तो वे पड़े रह जाते हैं। देखो अब वो राख पड़ी रह जाती है कि नहीं पड़ी रह जाती है, वो राख को जाके गंगा जी में डालने जाना पड़ती है, वो सब शरीर जल जाता है पूरा जब जलाते हैं ना वहां जाकर के, और राख पड़ी रहती है, और कुछ कुछ हड्डी के टुकड़े पड़े रहते हैं, दांत मांत पड़े रहते हैं, उन्हें निकालने भूल के गंगा मैया में डुबा के आते हैं। तो जिनका नहीं जलने का स्वभाव है वे नहीं जलते हैं, जिनका जलने का स्वभाव है वे जलते हैं। तो शरीर में आत्मा जो है वो नहीं जलता है, क्योंकि उसका जलने का स्वभाव ही नहीं है, समझे ना, जलने का स्वभाव नहीं है तो वो नहीं जलता है। तो भेद विज्ञान ज्यादा जरूरी राग से है, इसलिए उन्होंने शुरू किया, एको कर्ता चिदेह में कर्म को पादयो इत्यज्ञानम् कर्तिम प्रवृत्तिम। कहते हैं एक आत्मा है कर्ता और रागादि भाव मेरे कर्म है, कर्म क्रोधादयोदा, क्रोधादयो नहीं लिखा ना, क्रोधादयो नहीं। तो यदि ज्ञान अभी हमको उनको वो कहना होता दृढ़ कर्म की बात, तो क्रोधादय नहीं कहते, ज्ञानावरणादि कहते। जब भी दृढ़ कर्म की चर्चा होती है तो ज्ञानावरण को मुख बनाया जाता है, ज्ञानावरणादि बोलते हैं। जब भी भाव कर्म की चर्चा होती है तो क्रोध को मुख बनाया जाता है और बाकी को उसके साथ में आदि में डाल देते हैं। तो वो राग की बात कर रहे हैं, वो राग से भिन्नता की बात है। ये बात इसमें भी लिखी है। देखो इस कारण जो जिनेश्वर देव के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करता है, मोह को नाश करने वाला वह अल्पकाल में ही सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। स्वपर के विवेक से ही मोह का क्षय होता है। अब स्वपर का विवेक करो तब मोह का क्षय होगा। इसलिए स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अब गाथाओं में स्वपर का विभाग करना है, यानी वो जो कहा था कुछ करोगे तो होगा, क्या कहा तलवार चलाओगे तो काम होगा, बोली तलवार तुम्हारे हाथ में आ गई इससे तुम नहीं जीत गए, तलवार के साथ शत्रु को मारोगे तब तुम पुरुषार्थ करोगे तब तुम जीतोगे। यहां क्या कह रहे हैं कि तुमने जान लिया कि आत्मा परद्रव्य से भिन्न है, राग से भिन्न है, तो ऐसे काम नहीं होगा, राग को तलवार से काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, राग से भिन्नता जान ली इतने से काम नहीं होगा, पर को तो इतने से काम हो जाएगा। कितने से? कि देह मैं नहीं हूं, इस देह को काटना नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनो, राग को काटना पड़ेगा है? अब कैसे काटोगे? देह को जिस तलवार से काटते वो तलवार तो काम आएगी नहीं है? तो क्या पहले भेद विज्ञान करना पड़ेगा कि ये तो नक्की करो कि इसके दो टुकड़े करना है हमें, तो वो दो टुकड़ों में से कौन सा हिस्सा एक तरफ रखना है, एक दूसरी तरफ कौन सा रखना है, एक तरफ मन स्वा में कौन सा रखना है और पर में कौन सा रखना है, ये तो आपको जानना, बीच की सीमा रेखा तो जाननी पड़ेगी। अब देखो हमने देह के साथ भी जान ली कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, और हमने राग के साथ भी जान ली। सुनना, अब देह के साथ तो काम पूरा हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब राग को काटने के लिए, राग से भिन्न जो आत्मा है उसमें अपनापन करना पड़ेगा, चाहे वो एक क्षण को ही सही, उसका ध्यान पूर्वक अपनापन करना पड़ेगा, उसकी अनुभूति पूर्वक, जिसे हम बोलते हैं ना, वो अपने शास्त्र में अनुभूति शब्द आया, ध्यान नहीं आया। माने ये मैं हूं ऐसा जान के उसमें ही जम जाओ। अब एक सेकंड को जमे कि एक घंटे जमे कि क्या जमे, जितनी तुम्हारी ताकत हो, तो एक समय भी जमोगे तो पहला काम तो हो जाएगा। माने समय दर्शन समय ज्ञान तो हो जाएगा, अनंतानुबंधी कसाई भी कट जाएगी। अब देखे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो ये करना है, अब उनने बस फिर तो बात क्रिया काम जो बाहर का है उसको कह दी। अब कहते हैं तो लोग कह दी तुम उसके पीछे ही पड़े रहते हो, एक आध दिन तो छुट्टी रखो उसकी, बहुत डंडे पड़ गए उसको, क्यों? एक आध दिन एंट्री देनी है, श्रद्धा में एंट्री देनी है, क्या करें? एंट्री नहीं देनी है तो देह को तो इतने से काम चल जाएगा। देखो केवल ज्ञान नहीं रुकेगा आपका, देह रहेगी, आत्मा देह में बैठा रहेगा और केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन राग का अंश रहा तो केवल ज्ञान नहीं होगा। अब सत्य बोलो कौन है, विरोधी कौन है, केवल ज्ञान का विरोधी कौन है? वो उत्कृष्ट जाति का पुण्य है ना विरोधी है? जब तक वो मोह है, जब तक मोह है, मैं चारित्र मोह है ना, तब तक देखो दसवें ग्यारहवें गुण स्थान तक है, वो भी जाता है जिसके अंदर में मिथ्यात्व पड़ा है। आता है ना मुनि एकादश गुण स्थान चढ़ गिरत तहां ते त्रिभिम धानी, हमें जाने नहीं, हमें ज्ञान नहीं, हमें जाने नहीं, हम तो सीधे दसवें से सीधे बाद में जाएंगे कि बेटा तुमने छपक्षणी मारी है ना, तो तुम ग्यारहवें नहीं जाओगे, हम छपक्षणी मारी नहीं तो कहीं चले जाओगे, उठे हम मानेंगे ही नहीं, ऐसे बोलता है जैसे इसके हाथ में हो गए।
बुद्धिपूर्वक का काम ही नहीं है वो, वो ऐसा सोच समझ के मान रहा है कि मैं थपक सा नहीं मारूंगा, मैं उसम सा नहीं मारू, वो ध्यान में बैठता है जो होता है वो होता है, उपसम से नहीं मरती है तो उपसम मरती है, थपक मरती है तो थपक मरती है, नहीं नहीं साहब वहां से गिर जाता है तो हमें पसंद नहीं है। तो क्या कह रहा है तुझे, वो उत्कृष्ट निर्मल दशा है तो उसको हे कह रहा है, हमें मारनी नहीं, हमें नीचे ही अच्छे, तो नीचे को अच्छा मान रहा है क्यों, कोई छठ में नहीं रहना है क्यों, ग्यारहवें तक नहीं जाना है, नहीं नहीं हम तो जाएंगे तो सबक नहीं मरेंगे, ऐसे भी शर्त लगती है वहां नहीं लगती है, जिसको उपसम से नहीं मिल जाए उपसम में जाएंगे, सब में जाएंगे, सब में जाएंगे, हमको क्या, हम तो उस पर्याप्त ही नहीं लीजिए, जो होनी है हो जाए, नहीं होनी हो नहीं हो जाए। मैंने जब बुद्ध व्याख्यान किए थे ना उस पर काय पर संलेखना पे, तो इस बात पर मैंने बहुत वजन दिया था कि हम मर के कहां जाओगे, जहां जाएंगे चले जाएंगे, थोड़ा नरक, हाँ जहां जहां जाएंगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं कहना है, कोई मांग नहीं रखना है किसी से, कुछ भी हमारी मतलब मांग तो है ही नहीं, लेकिन श्रद्धा के लेवल पर नहीं और चारित्र के लेवल पर भी हमारी उसमें कोई इच्छा नहीं है, तो लोगों को नहीं जिचता था क्यों, ये लुट जाओगे फिर कोई कुछ देगा ही नहीं तुम्हें, अरे वाह तो तुम भिखारियों को मिल जाएगी, भिखारियों को दे देगा क्यों, कि मुझे फलाना स्वर्ग मिल जाए, मुझे फलानी गति मिल जाए, मेरे को तो ऐसा हो जाए, मेरे को तो ऐसा हो जाए। हमारे गांव की एक बुढ़ी अम्मा थी, हमारे पड़ोस में ही रहती थी, बहुत छोटे थे हम, तो बड़े कहते थे मेरे से, हे भगवान मेरे को तो पथरा बना के ना। उस वक्त हम उससे कहते थे कि अम्मा जी पथरा बन के क्या करोगी, जितने बजे कितना आराम से पड़ा है, कोई तकलीफ नहीं है इसको, वहीं जो पत्थर पड़े रहते थे ना आराम से पड़ा है, कोई तकलीफ नहीं है, अपन को कितनी तकलीफें हैं, तो क्या बताएं उसे, जो पृथ्वी कारक होता है पत्थर भी, और वो जो पड़ा है वो तो पथरा, वो तो अजड़ है, बोलो उसमें तो चेतन है ही नहीं, आप समझे, उखड़ा पत्थरा पड़ा है ना, वो तो जड़ है, तो जड़ बनना है, और चेतन भी हो तो एक इंद्री की प्रजा है, पृथ्वी कायक है, क्या कह रहे हैं कि हमें तो पत्थरा बना देना, लेकिन बिना मांगे नहीं रहेगी, चाहे पत्थरा ही बना है लेकिन मांग के लेगी कि मोक्ष लेना, कहा हमें नहीं चाहिए कुछ, हमें कुछ नहीं मांगना है, तो तुम क्या चाहते हो, कुछ नहीं चाहते नहीं, तो भी कि हमको जो हमारा होना है सुनिश्चित है वो ही हो, ऐसा चाहते हैं, बोले चाहना तो कहना है, ये चाहना थोड़ी है, हम नो चेंज चाहते हैं, अनादिकाल से हमारी जो भविष्य की पर्याय हैं जैसी होनी हैं वैसी ही हों, हम उनमें कोई चेंज नहीं चाहते, साहब वो आपकी बहुत खराब है, आप सोच लो एक दफे, अभी हमको कुछ नहीं सोचना है, जो होगा हमको उसके, क्योंकि उसके अलावा कोई मिलने ही वाला नहीं है, तुम्हारे चाहने से होता क्या है, बोलो। तो ये बात कैलाश जी सच्ची नहीं है क्या, परम सत्य है तो हमने उसको दृढ़ता से रखा सामने, ख्याल में है ना, और अपने जीवन में भी उसको श्रद्धा के लेवल पे भी अपनाया कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, ख्याल में आए ना, तो गलत है वो, अचानक निकला था क्योंकि वो आदमी हमसे इंटरव्यू लेने नहीं आए थे, अचानक ही पूछ लिया था बीमारी हालत में, आप समझ गए ना आपकी में है? तो अचानक ही जवाब दिया था, तो वो श्रद्धा के लेवल में कहीं पड़ा था ना, कहीं बिना उसके विचार के भी पड़ा था, वो विचार के लिए कोई सहन सहन होता ही नहीं है, जो जिस चीज की तुम मांग करोगे इनडायरेक्ट वे में उसमें तुम्हारी उपाधेय बुद्धि पड़ी है ना, तो उपाधेय बुद्धि निकालनी है कि नहीं, निकल ही गई हो तो कैसे मांगेगा, और नहीं निकल गई हो तो निकालनी है, यदि हम ऐसा करेंगे तो हम ठगाए जाएंगे। अभी तेरे को यहां ठगाए जाने का डर है, अभी तेरे इस बात पर भरोसा ही नहीं होता कि भगवान के ज्ञान में जो झलकता है वो 100% सत्य है और सब कुछ नक्की होता है। तो जिन्होंने भगवान ने ये परम सत्य बात कही है, अभी तेरे को वो बात ही नहीं देखती है, क्या करें है? तुझे पता नहीं है कितनी बड़ी गलती हो रही है, उसमें कितनी बड़ी गलती है कि हमारी जरा सी बात मानने को तैयार नहीं है, जरा सी बात मानने को तैयार नहीं है। हम इंटरव्यू लेंगे सदादा, हम आपका इंटरव्यू छापेंगे, आप हमको बता दो। आपको कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है, मत चाहिए, लेकिन आप कोई नाम तो ले दो एक आध का, हमें छापने को तो चाहिए। तू सारी दुनिया को यह ज्ञान प्रसारित करना चाहता है क्यों? तो हमारे बारे में भी वो गलत होगा ना, तो हम जो कह रहे वो नहीं लिख सकता। अब वो तो उसके गले ही नहीं उतरता, तेरे नहीं उतरता, लेकिन मेरे तो उतरा है ना। तू मेरी तरफ से छाप रहा कि तेरी तरफ से? बोल, छाप तू रहा है, लेकिन जब मेरे नाम से छापेगा ना तो दुनिया जब मूर्खता है तो दुनिया मुझे मूर्ख कहेगी, तो तू काहे को फिक्र करता है? कितनी बड़ी बात है वो श्रद्धा होना। क्यों? मैं सब विद्यार्थियों से पूछता हूं, ये काम तुम्हें यहां 5 साल में नहीं कर सकते, इसमें तुम्हें क्या बाधा है? घर वाले भी विरोध करेंगे। यदि तुमने यहां पर शादी नहीं करने का संकल्प कर लिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, तो घर वाले तुमसे भी लड़ेंगे और हमसे भी लड़ेंगे, समझना। क्या? और तुमने किसी लड़की से उनसे पूछे बिना शादी कर ली तो भी लड़ेंगे, कहेंगे आप समझ आए ना, जाति में करी, अंतर जाति में करी, कहां करी, उस सब में लड़ेंगे। लेकिन तुम ये नक्की कर लो कि मुझे किसी का कुछ चुनाव नहीं करना है, जो अनादि से नक्की है पर वो मुझे वही पसंद है, तो इसमें किसका घर वाला विरोध करेगा मुझे बताओ, किसका गांव वाला विरोध करेगा? वो करेगा तो उसकी कीमत क्या है? क्यों करेगी तो उसकी कीमत क्या है मुझे बताओ, सही है ना? इतना इतना तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई चारित्र की प्रतिज्ञा नहीं लेवा रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये तो वस्तु का स्वरूप है। आगम पढ़ पढ़ के तुमको खूब लग रहा हो कि ये बात परम सत्य है तो स्वीकार करो, नहीं है तो नहीं बात है।